रूहुल कुरान, और आज हम इसमें करेंगे पारा नंबर 25, इलैही युरद्दू। इस पारे का नाम है सूरत फुस्सिलत। सबसे पहली सूरत है इसमें जिस पे हम आएंगे, और अब वो पारे शुरू हो रहे हैं कि एक ही पारे में बहुत सारी सूरतें। इसका कुछ हिस्सा हम पिछले पारे में पढ़ चुके, आज हम इसको 47 आयत से लेकर एंड तक पढ़ेंगे। फिर इसी पारे में सूरत शुरा आएगी, सूरत जुहरुफ, सूरत दुखान और सूरत जासिया। अल्लाह से दुआ करके शुरू करते हैं। आयत नंबर 47, 48, शिर्क करने का हसरतनाक इंजाम। इलैही युरद्दु इल्मुस्सा वमा तखरुजु मिन समराति मिन अकमामिहा वमा तहमिलु मिन उन्सा वला तदउ इल्ला बिइल्मिही। उसी की तरफ लौटाया जाता है इल्म क़यामत का, और जो भी फल निकलते हैं अपने शगुफों में से, और जो कोई मादा उठाए फिरती है, मुराद फीमेल यानी औरत प्लस हर जानवर, उसकी मादा, उसके पेट में जो बच्चा है और जिसको वो जनती है, हर चीज़ का इल्म हमें है। अब देखिए कि क़यामत की बात है, और दुनिया में नामुमकिनात को मुमकिन होता देखता है इंसान, लेकिन गौर नहीं करता। उसकी बात है यानी फले फल का शगुफे से निकलना अगर मुमकिन है, एक बच्चे का माँ के पेट से निकलना मुमकिन है, तो कब्र के पेट से निकलना क्यों मुमकिन नहीं? असल में उनके उस अकीदे पे जो कि उनका था कि हम मरने के बाद दोबारा कैसे जिएंगे, तो इस आयत में क्या पैगाम है कि क़यामत का आना यकीनी है, क्योंकि अल्लाह ताला का इल्म वसी है। क़यामत कब आएगी, कब नहीं आएगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को है। बाकी सारी मखलूकात अल्लाह ताला के आगे आजिज़ हैं। हमें क़यामत के आने के वक्त से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र होनी चाहिए कि हमारे साथ उस दिन क्या होगा। एक तालिब इल्म यही पूछता रहे कि इम्तिहान कब है या रिज़ल्ट कब आएगा, उसको मेहनत करनी चाहिए, और आज दुनिया में लोग मेहनत करने से अक्सर कुतराते हैं। फिर आगे आयत नंबर 49 से 51, अक्सर इंसान नाशुक्रे और बेसब्रे होते हैं। क्या ये बात दुरुस्त लगती है? बिल्कुल ऐसे ही लगता है हमें भी कि लोग ज़रा सी खुशी मिलने पे आपे से बाहर हो जाते हैं, शुक्र की बजाय नाशुक्री का रवैया अख्तियार कर लेते हैं, और ज़रा सी तकलीफ़ आई तो परेशान, डिप्रेशन और इसी तरह की बातें आने लगती हैं। एक्सट्रीम्स है ना, पेंडुलम को जेन दिलाइए, उसको हल्का सा हाथ दे देना तो पूरे एज पे जाता है, फिर दूसरी तरफ जाता है। इंसान को पेंडुलम नहीं होना चाहिए, खुशी और गम में तहजीब के साथ अच्छे तरीके से अल्लाह ताला के साथ भी ताल्लुक़ अच्छा रखना चाहिए और बंदों से भी। फिर आयत 52 से 54 में कुरान पाक की सच्चाई, कुरान पाक की हक्कानियत का तذکرہ है, और इसमें आप देखते हैं कि कैसे अल्लाह ताला ने कुल अरअयतुम इन काना मिन इंदिल्लाहि थुम्मा कफरतुम बिही, आप देख रहे हैं कि तो बच्चों इस तरह से दिलाई जा रही है, बिल्कुल सूरत का एंड है ना, और अक्सर सूरज का एंड आप ऐसे ही देखेंगे कि सोचो अगर ये नबी या ये कुरान वाकई अल्लाह की तरफ से हुआ तुम्हारा क्या बनेगा। वही अंदाज के एक शख्स हजरत अली के पास आता है और कहता है कि आप मुसलमान कैसे हो, ना देखी ना सुनी ना पता है होना है कि नहीं होना, और ऐसी आखरत के नाम पे तुम दुनिया में अपने मज़े नहीं लेते, और तुमने अपने ऊपर बड़ी मुश्किलें रखी हुई हैं, मुझे देखो मैं कितने मज़े में हूँ, जो दिल चाहा किया जो चाहा कर लिया। हजरत अली ने उसकी बात पे कहा कि भाई अगर तेरी बात दुरुस्त हुई और क़यामत ना आई तो मेरा क्या गया, चलो कोई नेकी की तो किसी का भला हो गया, किसी गुनाह से बच गया, ज़िंदगी में सुकून मिल गया, लेकिन तुम सोचो कि अगर मेरा गुमान जो मेरा यकीन है वो दुरुस्त हुआ तो तुम्हारे साथ क्या बनेगा। ये सुन के वो शख्स मुसलमान हो गया। इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल तबलीग, जहनों को टच कीजिए, हल्का सा टच करके छोड़ के आगे चले जाइए, लोग खुद ब खुद सुनेंगे। हम बस सिर्फ अपने बच्चों और अपने साथ रहने वालों को जिच कर देते हैं, फिर उनकी अना जाग जाती है, ज़मीर जागने की बजाय तो लिखिए अना सोया हुआ शेर है, उसको सोने दीजिए। तबलीग के नाम पर लोगों के अंदर ज़िद की कभी भी नफ्सियात ना आए। फिर इसके बाद सूरत शुरा शुरू होती है, इस्लाम का मिजाज समझाती है ये सूरत। शुरा कहते हैं मशवरे को, जैसे भी कहीं भी आप कहीं करें, इसका आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन दीन का मिजाज इज्तमाई है और इसमें 53 आयात हैं। इस पूरी सूरत में एक मुस्लिम सोसाइटी बनाने के कवानीन और ख़ास तौर पे निफाज़े शरिया, शरा लकुम मिन दीन इमा वस्सा। दूसरी चीज़, आप सूरह शुरा में लफ्ज़ वली बहुत देखेंगे, जो ख़ास तौर पे देखा जाए तो अल्लाह ताला के लिए एक बड़ा खूबसूरत जरिया है अल्लाह से ताल्लुक़ का। तीसरी बात, इसमें फितरत का लफ्ज़ बहुत आएगा, यानी आप कहें कि ह्यूमन इंस्टिंक्ट को, इंसानी फितरत को टच करने वाली सूरह है। देखते हैं इसके मज़ामीन को। पहली 6 आयात अजमत बारी ताला से मुतल्लिक है और आप देख रहे हैं कि इसकी एक और यूनिक चीज़ हमारे सामने है। हामीम, एक आयत पूरी। आइन सीन कौफ, यानी 2 आयतों पे हरूफ मुकत्तात है। यानी सूरत मरियम में को कमो बेश इसी तरह के अल्फाज थे, लेकिन वो 1 आयत थी, यहाँ 2 आयतें हैं। ये भी एक खूबी है, गोया कि और भी बेबस किया जा रहा है सुनने और पढ़ने वालों को कि तुम तो इसकी शुरू की 2 आयतें ही नहीं समझ सकते, तो तुम्हारा इल्म क्या है? तुम अपने इल्म के दावेदार हो, अल्लाह के बताए हुए निज़ाम को, उसके सिस्टम को तुम नाफिज नहीं करते और इंसानों की बनाई हुई चीज़ों से मुतासिर होते हो। तो गोया कि यहाँ अल्लाह ताला की तारीफें भी हैं, वही का तذکرہ भी है, आसमानों पे फरिश्तों के वजूद की भी बात है, और वो फरिश्ते करते क्या हैं? युसब्बिहूना बिहम्दि रब्बिहिम, वो तस्बीह बयान करते हैं अपने रब की। चलिए, ये तो फरिश्तों ने खुद भी कहा था, हाँ, कि हम तस्बीह भी करते हैं, तकदीस भी करते हैं, इंसान को बनाने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन अगली बात का तذکرہ हम सब से है। वयस्तग़फिरून लिमन फिल अर्थ, फरिश्तों का काम क्या है? कि वो ज़मीन वालों के गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। क्यों, क्या ताल्लुक़ है? अब इन पारों में आप देखते जाएंगे कि अर्शियों का ताल्लुक़ फरशियों से, आसमान वालों का ताल्लुक़ ज़मीन वालों से। हम सबको दावत दी जा रही है कि इसी रोज़ और शब में खो के ना रह जा, तेरे ज़मानो मकान और भी है। तो गोया के तौबा करने वाले अल्लाह के फरिश्तों की दुआएं पा लेते हैं। फिर इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िम्मे है पहुंचाना और अल्लाह ताला के ज़िम्मे है हिसाब लेना। आयत 7 से 9 में आप ये मज़मून देखेंगे कि अम्बिया कराम हिसाब लेने नहीं आते, वो लोगों के ऊपर वकील बनाकर या पहरेदार बनाकर नहीं बिठाए जाते, वो तो पैगाम देते हैं। वकज़ालिका ओहैना इलैका कुरआनन अरबिया, हमने तो इसी तरह आपकी तरह वही किया इस कुरान को अरबी में। लितुनज़िर उम्मल कुरा, ताकि आप बस्तियों वालों को वॉर्न करें, उनको आगाह कर दें। पमन हौलहा, और जो इनके इर्द गिर्द हैं, और तू डरा दे उनको उस दिन के लिए जिसमें लोग जमा किए जाएंगे और उसमें कोई शक नहीं। अब देखिए, यहाँ फिर क़यामत का एक और नाम आ गया, पीछे भी हमने पढ़े थे यौमल जम, वहाँ यौमल आजिफा, और इसी तरह थे। तो क़यामत के जितने नाम हैं ना, ये सारे काम भी हैं। उस दिन लोग जमा होंगे तो यौमुल जम है, और फिर ला रही बफी, कोई शक नहीं इसके आने में। अब आगे रिजल्ट सुनिए। फरीकुम फिल जन्ना, एक गिरोह जन्नत में जाएगा, अल्लाह में उनमें कर दे। व फरीकुम फिल सईर, और एक गिरोह, देयर इज़ नो थर्ड ऑप्शन। कुछ लोग दुनिया में ये सोचे, चलो कोई बात नहीं ना, जन्नत ना मिली तो खैर है, कोई न्यूट्रल सी प्लेस होगी, अल्लाह में वहाँ डाल देगा, हम भी तो बड़े न्यूट्रल मुस्लिम थे ना। तो देखिए, हेयर और देयर, हेल और हेवन, दैट्स इट। बिलफर्ज अगर पाँव बाहर रह गया तो फिर न्यूट्रल नहीं है, अल्लाह सबको बचा के रखे। फिर उसके बाद कुछ बातें करने के बाद तौहीद पर दलाइल हैं आयत 10 से 12 में, और असल बात है कि तौहीद ही पुख्ता करने के लिए अल्लाह ताला दुनिया में भेजा। और कुरान पाक का जो असल मिजाज है ना, या असल पैगाम है, वो मुझे तो बस 3 बातें समझ आई हैं। नंबर 1, अपनी हस्ती को पहचानो, इयाक नअबुद व इयाक नस्तईन, कि तुम हो क्या। कभी इंसान की तख्लीक का तذکرہ इतना ज़्यादा आपने सुना या पढ़ा था जितना कुरान में आता है? दूसरा, जो कुरान का बड़ा मकसद जो मुझे समझ आता है, वो क्या है कि जब तुम अपनी हस्ती को पहचानते हो तो अल्लाह की बड़ाई को देखो, और ये दोनों का आप एक भी कर सकते हैं। इयाक नअबुदु, अल्लाह की बड़ाई को महसूस करते हुए अपनी बंदगी को लिया, व इयाक नस्तईन, और मदद उससे मांगी। यानी पहली हकीकत क्या है कि तुम अपनी औकात पहचानो और अल्लाह का मुकाम पहचानो। दूसरी चीज़ जिस पे इस्लाम ने बहुत ज़ोर दिया है, वो क्या है? वकज़ालिक जालनाकुम उम्मतम वसता, बींगा उम्मा, नबी सल्लम की उम्मत होने के नाते से अपना मुकाम पहचानो। तुम्हें अल्लाह ने दुनिया में सिर्फ इसलिए नहीं भेजा कि तुम ये काम करो, ये कुरान इसलिए नहीं आया कि तुम दौरे कुरान करो, ये इसलिए नहीं आया कि तुम इसको तरावियों में झूम झूम के पढ़ो, ये इसलिए नहीं आया कि कौलो इकरार करते हुए लो। ये तो है ही है, ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, असल में ये कुरान क्या है, इस पे फिर तीसरा तकाजा, और वो क्या है जो आप इस सूरह शुरा में पढ़ रहे हैं, इसको नाफिज करो। इसको तुम पढ़ पढ़ के बैठे हो, इस पे अमल तो करो, और अमल के फिर कई रंग हैं अपने इस 5 से 6 फुट के वजूद पे, अपने 100 से लेके 1000 गज के घर पे, और इसी तरह खुशी में गम में तुम्हारा जीना तुम्हारा मरना इस किताब से मुतल्लिक हो। इसके तकाजों को पूरा करो और होते होते इस पिक्चर को बड़ा करो, तुम्हारे मुल्क में इस्लाम हो, तुम्हारी इस पूरी दुनिया में इस्लाम हो। अब ज़रा सोचिए कि हमने ज़मीन का ये टुकड़ा जब हासिल किया था तो अमूमन क्या कहते थे, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या ये एक स्लोगन है, क्या चीज़ नहीं थी वहाँ, क्या हमने सिर्फ मस्जिदें, तो आज भी आपके मुल्क में जो मस्जिदें हैं वो भी अल्लाह की रहमत है, लेकिन आप गैर मुस्लिम मुल्कों में देखिए, इंडिया में आज माशाल्लाह कितने मुसलमान हैं। ये तो नहीं है कि मस्जिदें बनाने पे कोई पाबंदी है, कुरान थोड़े छपते हैं, हज़ारों लाखों कुरान के नुस्खे छपते हैं। असल चीज़ जिसको इस्लाम हमसे चाहता है, और वो क्या है कि तुम ज़मीन के इन टुकड़ों पे अल्लाह का निज़ाम नाफिज करो पूरी दुनिया में, छोटे से छोटे मुल्क को देख ले और बड़े से बड़े को। लोग उस शख्स को क्या कहेंगे कि जो किताब है जो उनकी कानून की, जैसे लेजिस्लेशन है हर मुल्क का एक होता है, एक भाई ये हमारे मुल्क का कानून, उसको कानून को पढ़ने लग जाए, लिखने लग जाए, सजाने लग जाए, दीवारों पे लिख दें, लेकिन अमल ना करें। आप देखिए कि स्ट्रीट लाइट्स हैं उनके ऊपर बड़ा बड़ा वो उस कानून का एक कह लीजिए कि उस कानून के एक शिक लिख दें कि रेड लाइट पे रुकना है, जो रेड लाइट पे नहीं रुकेगा उसको 10,000 रुपये फाइन होगा, लिखा हुआ है, उसको गोल्डन कागज पेपर पे लिख दें, ब्लैक पे लिख दें, लेकिन नीचे से गुजरने वाली गाड़ियाँ वहाँ रुके ही ना, क्या वो मुँह नहीं चढ़ाएगा? ये कर रहे हैं आज हम कुरान से, अल्लाह हमारी इसलाह फरमा दे। और इसमें एक बड़ा खूबसूरत जुमला आप नोट कर लें, लैस कमिस्लि ही शैयुन वहुवस समीउल बसीर, उसकी तो मिसाल जैसा भी कोई नहीं, अल्लाह जैसा नहीं, यहाँ नोट कीजिए, ये नहीं कहा कि लैस कल्ला, लैस कमिस्लि ही, तो क्या पता चला कि अल्लाह ताला को मखलूक पर कियास नहीं करना चाहिए। बस लोग अल्लाह ताला के बारे में बात करते हुए ज़रा गैर जिम्मेदाराना अल्फाज बोलते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला का तसव्वुर इल्म, ताकत, कुदरत, अजमत, हिकमत और बहुत कुछ दुनिया की हर चीज़ से बाल है। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह डॉक्टर है, अल्लाह के हाथ हमारे हाथों जैसे हैं, बस अल्लाह नूरु समावाती वल अर्द। दूसरी चीज़ इसमें एक और थी, लहू मकालीद उस समावाती वल अर्द, मकालीद जमा है, चाबी को कहते हैं, कुंजी, कीज़, उसके पास आसमानों ज़मीन की चाबियां हैं। क्या मतलब है इसे, कोई हमारे घरों की तरह दरवाज़ों पे ताले लगे हुए हैं? नहीं, हर चीज़ अल्लाह के पास है, हर चीज़ इसी से मांगनी चाहिए। कभी भी कुछ चाहिए हो, सबसे पहला ख्याल किसका आता है, तो पहला ख्याल अल्लाह ताला का आना चाहिए, जिसके पास मेन कंट्रोल हो। आप देखिए कि आपका ऐसी काम ना करे अगर बिलफर्ज, आप यहाँ मैं जो मर्ज़ी करते रहें, हमें क्या करना चाहिए, जिनके पास कंट्रोल है उनको पूछ लें, आवाज़ कम ज़्यादा करनी है। हमारा हाल क्या है कि हम सब हाथ डालने शुरू हो जाते हैं और पहले से भी बिगाड़ देते हैं, शिर्क भी यही है, डायरेक्ट अल्लाह के पास जाकर अपने मसले हल कराओ। बाद में पता चलता है जिसको हमने रिमोट पकड़ा दिया उसको तो पता ही नहीं था, उसने कभी स्पीकर को टच नहीं किया, माइक सिस्टम तो उसको पता ही नहीं, और हम उसको कह रहे हैं, और वो भी बेचारा अपनी इज्जत रखने के लिए बटन इधर से उधर घुमा रहा है, शिर्क में ये हो रहा है। वो लोग जिन्होंने कभी कहा भी नहीं था कि हम कुछ कर सकते हैं, लोग भी उनके पास जाकर बैठे होते हैं। फिर आगे देखिए सूरत का जो मेन थीम है, इकामत दीन का हुक्म, 13 से 16 में, शरअ लकुम मिन दीनि मा वस्सा बिही नूहा, और उसने बयान कर दिया, शरा का लफ्ज़ भी, शरीयत का लफ्ज़ भी हमारे लिए आम है, शारे का लफ्ज़ भी आम है। अब क्या हुआ कि जब आप कोई भी बात पढ़ते सुनते हैं ना, तो आप ज़रा से उस पर गौर किया करें, यानी ये हैं वो आयतें जो पाकिस्तान का मतलब क्या को वाज़े करती हैं कि तुम्हें अल्लाह ने उस नबी की उम्मत में किया कि जो पीछे से हज़रत नूह के दौर से चलता आ रहा है। याद रखिए कि एक नबूवत का काफ़िला एक ट्रेन की तरह अगर ज़हन में ला ले आए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उसकी फ़र्स्ट बोगी थे, इंजन के बाद पहला कैबिन हज़रत नूह के दौर का था, होते होते इब्राहिम, मूसा और ईसा, आखिरी बोगी खातमुन्नबीयीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर दौर में अम्बिया किराम ने तबलीग तो की थी, लेकिन इकामत दीन बहुत कम हुई। नबी सल्लम से जो एक बड़ा काम अल्लाह ने लिया और करके दिखाया साहबा ने, खुलफ़ाए राशिदीन का जो दौर है ये इकामत दीन की अमली ताबीर थी, और उसके बाद भी ये सिलसिला चला, हत्ता कि अगर आप देखें तो 1000 साल तक दीन नाफिज था, पूरी दुनिया में अमन था। ये जो आज हो रहा है ये था, पूरी दुनिया को रिस्क मिल रहा था। इतना नाच था उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के दौर में कि जब ज़कात का माल जमा किया तो लोगों ने पूछा कि किसको दें, उसको दे दो उसको दे दो, कहा कोई गरीब नहीं है, बेवाओं को दे दो उनके पास भी है। अच्छा जाओ फिर इसका दाना खरीद कर पहाड़ों पर डाल दो, परिंदे खा लेंगे। ये कोई खेल नहीं है, ये बरकत है अल्लाह के दीन के नफाज की। एक हाथ ज़मीन पर लग जाती है तो रिवायत से आता है, पता रिवायत के मुताबिक 40 साल की बारिश के बाद किसी मुल्क में जो सब्ज़ा और हरियाली आती है ना, उससे ज़्यादा फ़ायदा एक एक हद के लगने का है। और हदूद हर वक्त थोड़ी लगती हैं, उन मुल्कों में तो चैन और अमन है। आज भी आप जाके पूरी दुनिया के क्राइम्स का स्टैटिस्टिक्स निकाल लीजिए, उसके स्टैटिस्टिक निकालें, आप देखेंगे कि जहाँ चले पार्शल ही सही, लेकिन ऐसी चीज़ें मौजूद हैं वहाँ आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। पूरी दुनिया से क्राउडेड लोग, कितने लोग आते हैं हज और उमरे पे, चोरियाँ होने लगती तो वहाँ बदनामी हुई होती, वहाँ गए थे चोरी हुई। अब खुली सोने की दुकानें देखते हैं, नमाज की अजान के ऊपर खुली छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अगर हमने किसी के माल पे नाहक हाथ डाला, ये हाथ मोमिन का हाथ ही नहीं रहा, इसको काट दो, और ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जिसको हमारे यहाँ कहते हैं ना कि मारे से डराया बेहतर। फिर दूसरी चीज़ जो इसमें आपके लिए और मेरे लिए काबिल गौर है वो क्या है, वला ततफर्रकू, तफरकों में ना पड़ो। जब आप एक बात अल्लाह की मान लेंगे ना तो सब की बातें दब जाएंगी। आज जो ये जो प्लेग की तरफ तफरकाबाजी, और सबसे बड़ी बात के बद अखलाकी है। कल मुझे किसी ने एक पिक्चर शेयर की, एनिमेशन थी, तो मेंबर बने हुए हैं मस्जिदों के, और एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और उनके मेंबर्स के अंदर से यानी कुछ लोग निकल कर एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, और नीचे ये लिखा हुआ था कि हमें तो बड़ी ख्वाहिश थी कि कोई हमें कुरान सिखाता, हर एक ने अपना मसलक सिखाया। अब ये बात किस हद तक सही है इसको छोड़ दें, लेकिन याद रखिए कि तफरकाबाजी की असल वजह फिर दुनिया ही है। वो पैसे की सूरत में है, वो लीडरशिप की सूरत में है, या वो क्या है। फिर एक और इसके अंदर जम है, वस्तकिम कमा उमिरता, आप वैसे इस्तकामत इख्तियार करें जैसा आपको हुक्म दिया गया, क्योंकि इस्तकामत में क़यामत है। कच्ची चीज़ तो आप नहीं खरीदते, कपड़ा लाए और पहना भी नहीं अभी और उसका रंग निकल गया, फट गया, बर्तन में अभी चाय डाली और चाय कप टूट गया, नहीं, आप कहते ड्यूरेबल हो। इस्तकामत क्या, ड्यूरेबिलिटी। तो इस्तकामत में आला अखलाक भी है, ईमान लाने के बाद इस पर कायम रहना और डट जाना चाहिए, और मुश्किलात से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए कि जब तक हम कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार नहीं होंगे, चेंज नहीं आएगी। फिर अगली चीज़ जो इसमें वो है, इकामत दीन के लिए क्या करें, कोई इसका भी तरीका और जाब्ता होगा। बड़ी बड़ी टर्म्स हैं, क्या हुकूमत में ऐसे कुछ काम करने हैं क्या। देखिए ये स्टेप्स हैं, इसका नुक्ते आगाज़ ये किताब है। इस वक्त आप सब जो माशाल्लाह इतने दिन से सुन रहे हैं ना, आप इस इकामत दीन के रास्ते पे चल पड़े हैं, तो सबसे पहले किताब, इसके लिए इंसान को किताब का सहारा लेना होगा। बच्चे बच्चे को ये किताब समझ आए, ग्रास रूट, ये मांगने वाले बच्चे। आपने कभी राह जाते लोगों को रोक के बच्चों को पूछा, बेटा नमाज पढ़ी है आपने, बेटा आपने रोज़ा रखा था, आओ मैं तुम्हें पढ़ाऊँ। हम उनको 10-20 रुपए दे के, और वो भी क्या, आप तो 100 से कम कोई लेता भी नहीं है, हम फारिग कर देते हैं, नहीं। आप दरख्त की जड़ों में पानी डाल दें, फितरत के खूबसूरत असूल के तहत वो सारे दरख्त की शाखों से होता हुआ पत्तों में आ जाएगा। इस वक्त हमें अपने इस मुल्क में और इस पूरी दुनिया में ओवरऑल देखें, जिस पानी को आम करने की ज़रूरत है वो कुरान है। ये कुरान का नूर है, यही स्लोगन है नूरुल कुरान का, इनलाइटन द हार्ट विद द नूर ऑफ अल कुरान। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह मौके दिए तो दुनिया में कितने मुल्कों में ये पैगाम गया। और वहाँ बैठकर आप जिस मुल्क का टिकट लेकर जाएं, आपको वहाँ कोई ना कोई उसका छोटा मोटा काम दिखेगा। असल करने का ये काम है, हमें अपनी मासियों, ड्राइवर, बच्चों, बड़ों को इस किताब से जोड़ना है। और रियल टेक्स्ट आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि जब मैं अरबिक टेक्स्ट सामने देखती हूँ तो मुझे कितनी ख्वाहिश होती है कि मैं पूरा पढ़ूँ, लेकिन वक्त नहीं होता। लेकिन मुझे ये किताब मुझे उर्दू में लग रही है, मुझे तो अरबी तर्जमे के साथ उर्दू तर्जमे की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने इसका लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जमा लिया। और हम लोग अपना हर साल रमज़ान के बाद नया कोर्स लॉन्च करते हैं, कोर्स का नाम सबीरुल जन्नत, जन्नत का रास्ता। अल्लाह की रहमत से कई साल से ये सिलसिला चला और फारिग हो के स्टूडेंट अगले लेवल पे चले गए। लाइफ चेंजिंग कोर्स है, अब इसके बाद भी इंशाल्लाह शुरू हो रहा है। आप में से किसी के भी दिल में अगर इस मुख्तसर से सेट को सुनकर, जिसमें हम बहुत टू दी पॉइंट पे चल रहे हैं, अगर ज़रा सी ख्वाहिश भी पैदा हो ये ना कि चलो मैं क्यों नहीं, क्या मैं ऐसी हूँ कि मैं ना सीखूँ, क्या मेरे नसीब में कुरान नहीं है, क्या मैं दुनिया से सिर्फ रोज़ी रोटी कमा के चला जाऊँगा, क्या मैं सिर्फ़ इस दुनिया से बस बेफीकी सी बेरंग किस्म की नमाज़ें रोज़े करके जाऊँगा, नहीं तो आप इसको ले। सबसे बड़ी बात है ऑनलाइन है, टाइमिंग के साथ स्टूडेंट्स को एक्सेस मिल जाता है, जो चीज़ रह गई आप अपने हिसाब से ले लें। साथ मिलकर टेस्ट असाइनमेंट जो बड़े सिंपल से ऑनलाइन पे ही होता है सब कुछ, आपको असिस्ट किया जाता है। और क्या चाहिए, एक कदम भी घर से ना निकालें तो आपके लिए सहूलत है। और अगर आप यहाँ बैठे लोग हैं, इंशाल्लाह यहाँ भी आपके लिए कुछ करेंगे, करें तो सही। तो ये किताब आम करनी है, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। हम सोच रहे शायद शरीयत नाफिज करने का ताल्लुक हुक्मरानों से है, रॉन्ग। देखिए हुक्मरानों को कौन चूज़ करता है, और स्पेशली इस वक्त दुनिया में जो रास्ता है, हम सब जानते हैं कि इस वक्त जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, वो गैर मुस्लिम के लिए ठीक होगी, मुसलमान के लिए ठीक नहीं है। क्यों? कि एक जाहिल और एक पढ़े लिखे का वोट बराबर है, लोग 100 रुपये पे वोट दे देते हैं, और क्या चाहिए आपको। तो लिहाजा इसके ऊपर बात करनी है। दूसरी बात देखिए, मीज़ान, क़यामत से पहले इंसाफ से काम लेना है। हमारे मुल्कों में जब तक इंसाफ का निज़ाम नहीं लगेगा, हकदार को उसका हक ना मिले, और जिन्होंने दूसरों के हक गसब किए हुए हैं उनको सज़ा ना मिले, तो इकामत दीन नहीं होगी। इसलिए दुनिया में इंसाफ लाना है। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह का एक कौल याद आ गया, वो कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी हुकूमत कुफर पे कायम रह सकती है। आपके सामने हैं दुनिया में कितने मुल्क हैं जो कई तो ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा कोई रिलीजन ही नहीं, यानी वो इनकारी हैं, एथियस्ट हैं, लेकिन जुल्म के ऊपर कोई हुकूमत कायम नहीं रह सकती। ये जो आपको वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज सुकून और ख़ुशी का फीलर आता है ना, उसकी वजह वहाँ का इंसाफ है। घर से घर में काम करके निकलने वाली औरत और बड़ी सी कोठी और गाड़ी वाला एक ही स्टोर से सब्जी, दूध, पानी खरीदते हैं, सब एक ही खाते हैं। ये नहीं कि गरीबों के लिए वहाँ गले सड़े फ्रूट हैं और अमीरों के लिए बड़े बड़े खाने, ऐसा नहीं है। कोई किसी पे हाथ डाले, एक सेकंड में पुलिस आ जाती है। पता क्या चला? इंसाफ को आम करना। तीसरी चीज़, बदले का दिन, हिसाब के दिन को याद रखना चाहिए। कोई हुकूमत अपने लोगों को सज़ा के डर के साथ सीधा नहीं कर सकी कि जेल में डाल देंगे, तुम्हें फाइन कर देंगे। एवरी लॉ हैज़ अ फ्लॉ, ये असूल है। सिर्फ लोगों को उनके अपने ज़मीर की अदालत में खड़ा कर दें कि यौम यकूम अन्नासु ली रब्बिल आलमीन। अब एक और सवाल है कि इकामत दीन का मकसद क्या है। तो इसका मकसद क्या है कि इंसान के आमाल दुरुस्त हों और इनका मुहासबा भी किया जाए, यानी इस दुनिया में रहते हुए आखिरत के लिए तैयार होना। आपका मेरा काम क्या है? वट एवर वी कैन डू वी शुड डू। ख़वातीन घरों से अपने आप को फारिग करती हैं, इल्म की नशर इशात के लिए निकलती हैं, इससे बड़ा जिहाद कोई नहीं है। देखिए सहाबिया तो मैदान जंगों में भी जाती थी ना, मरहम पट्टी करने और खाना पानी देने। अल्लाह ना करे कि वो वक्त आ जाए, जो कौम कलम उठा लेती है ना उसको तलवार नहीं उठानी पड़ती। जिहाद तो इसी का आखिरी नतीजा है ना। कि जो चीज़ कलम से भी ना सुधर सकी फिर उसको तलवार से संभाल दो, तो ये स्टेप्स है।